सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संग करीब 8 बरस के बाद फिर से यहाँ बाड़मेर में आने का मौका मिला है और यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके इस विशाल सत्संग के रूप में बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहाँ पर ऐसा सुंदर भक्ति भरा वातावरण बना हुआ है, क्योंकि भक्ति भरी भावनाओं से युक्त होकर आप सभी इस सत्संग में शरीक हुए हैं और एक एक रसना इसी का गुणगान कर रही है, इस मालिक खालिक पारब्रह्म परमात्मा का। और इसी तरह से राजस्थान में कल जोधपुर में भी इसी तरह से 2009 के बाद फिर से आने का मौका मिला था, वहाँ पर भी ऐसा ही भव्य रूप बना। और कल भी यही जिक्र हुआ कि पिछले 6 महीनों में तीसरी दफ़ा राजस्थान की ये यात्रा निश्चित हुई और जहाँ जहाँ पर भी जाने का मौका मिला वहाँ वहाँ ही ऐसी भक्ति भरी भावनाएं देखने को मिली। और केवल राजस्थान की बात नहीं है, अगर जनवरी में महाराष्ट्र मुंबई में विशाल प्रांतीय समागम पर जाने का मौका मिला तो वहाँ पर मराठी भाषा में ही सत्संग समागम का आयोजन, और वो मराठी भाषा में संत तुकाराम जी नामदेव जी की वाणी का इस्तेमाल करके जो पाया है उसी का जिक्र कर रहे हैं। और वही जो यहाँ राजस्थान की धरती में मीराबाई ने पाया, और वो अपने ढंग से मीराबाई यही संसार को बता रहे हैं कि पायो री राम रतन धन पायो। और वहाँ पर भी यही महाराष्ट्र में पैगाम दे रहे थे कि हरी पाहिला कि मुझे हरी मिल गया है, परमात्मा मिल गया है, ईश्वर मिल गया है, जो अलखा है, जिसको कहा है कि अल्लो अलख न जाई लिखिया गुरु गुरु दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी सर्व निरंजन डीठा, कि जो वाकई अलख है इसकी लखता करा दी गई। जैसे पहले भी इसी अलख की लखता हुई मीराबाई को ही, कबीर जी को ही, इसी तरह से रविदास जी को हुई, बुल्ले शाह जी को हुई, यानी कि इसी अलख को की लखता की गई। और वो लखता हुई जब ज्ञान के चक्षु मिले, जब ये ज्योत जगी, तभी वास्तविकता में ये अलख की लखता हुई, ऐसी प्राप्ति हुई जिसके तुल्य दुनिया की तमाम प्राप्तियां जो हैं वो धूमिल पड़ जाती हैं। यही ऐसी प्राप्ति है जिसका लोक और परलोक दोनों में महत्व है, वरना दुनिया की बाकी प्राप्तियां वो इस लोक में भी पूरी तरह से वो महत्वपूर्ण नहीं साबित होती हैं। और परलोक तो वो बिल्कुल ही एक जैसे रेत का कण भी साथ नहीं जाता, इसी तरह से बाकी जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्ति हैं वो परलोक में तो इसका कतई कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये प्राप्ति जो सच की प्राप्ति है, इस सच्ची दौलत की प्राप्ति है, इस इंसानी जन्म का पूरा पूरा जो लाभ उठाया जाता है, ऐसे कदम उठाकर मंजिल मकसूद को पाया जाता है, दिव्य गुणों से युक्त होकर सुंदर जीवन जिया जाता है, आत्मा अपनी मंजिल अपने मूल की पहचान कर लेती है इसी शरीर में रहकर, तो वास्तविकता में ऐसी प्राप्ति हुई कि परलोक भी सुहेला हो गया। तो इसीलिए आज भी महापुरुष भक्तजन यही संदेश यही पैगाम दे रहे थे कि हमने वास्तविकता में एहसास करना है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। हमने इस जन्म को पाया है तो इस जन्म को पाने के लिए ये क्यों कहा गया कि बड़े भाग्यमान हो इस तन पावा, कि आखिर कोई बात तो होगी, अगर केवल खाना पीना सोना जागना भोग करने अगर इसी के कारण है तो ये तो पशु जानवर भी करते हैं, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। लेकिन फर्क कहाँ पर आता है कि ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि वाकई एक ज्ञान इंसान प्राप्त कर लेता है, इसको सोचने समझने की ताकत मिली है, लेकिन अगर उसका ही विवेक पूर्वक इस्तेमाल नहीं करता तो फिर बाकी जो कुछ भी करता है वो वही कुछ होता है जो जानवर और पशु करते हैं, इसका जीवन वहीं तक सीमित रह जाता है। इसलिए भाग्य तो हुए इंसानी जन्म मिला, लेकिन खुद अपने हाथों ही इसी भाग्य वाली बात को भाग्यहीन वाली बात बना दिया, क्योंकि वो कदम नहीं उठाया, वो नाता नहीं जुड़ा, वो जागृति प्राप्त नहीं की, आत्मा का भ्रम दूर नहीं किया, अपने मूल आत्मा की जो परमात्मा है इसकी पहचान नहीं इसको कराई, और फिर ये जीवन भी जिया तो अंधकार में जिया, वैर वास्तव में उलझ कर जिया, छीना झपटी करते हुए, हिंसा करते हुए, दिलों को दुखाते हुए, लूटमार करते हुए ये जीवन के सफ़र को तय किया, तो ये कीमत हमने डाली इन अमोलक सांसों की। तो इस तरह की नादानियाँ ये इंसान लगातार करते आए हैं, और आज के दौर में तो हम देख ही रहे हैं चारों ओर के वातावरण को कि किस तरह से इंसान इंसान के रूप में पैदा होकर इंसानियत का दामन छोड़कर जीवन जी रहा है, और इसीलिए अपनी पहचान खो रहा है, क्योंकि इंसानियत इंसान में से निकल जाए तो फिर जिसके कारण इंसान होने की पहचान है वही चली गई, यानी कि इंसानियत ही ना रही, फिर वो इंसान भी नहीं रहता है, फिर वो जानवर और हैवान कहलाता है, वो शैतान कहलाता है, ऐसे नाम उसको दिए जाते हैं, दोजक की आग में जलने वाला वो बन जाता है। और इसीलिए महापुरुष कदम कदम पर इंसान को एहसास कराते हैं, प्रेरित करते हैं, इंसान को इस तरफ अग्रसर करते हैं ताकि इंसान अपने ही हाथों अपना नुकसान ना करे। ये इंसानी जन्म मिला है तो इसका मोल डाले, ये हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि कौड़ी के भाव ना गंवा दे, मार्ग मोती बिखरे अंधा निकसे जाए, जोत बिना जग दीस के जगत उलंघे आए, कि मार्ग में जैसे मोती बिखरे पड़े हों लेकिन अंधापन ऐसा अंधापन कि वो कीमती मोती उसकी कदर नहीं हो रही है और कंकर की तरह पाँव के नीचे रौंद कर आगे निकल जा रहे हैं, और उसका नतीजा क्या, नतीजा यही कि उन मोतियों तक पहुंचने से पहले भी कंगाल थे, मोती तक पहुंच गए और क्योंकि अंधापन कायम रखा और उस मोतियों को कंकर माना और इसलिए फिर कंगाल के कंगाल रहे, यानी कि मालामाल होने का मौका मालिक ने बख्शा, ये नहीं कि अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया। इंसानी जन्म मिला इसको मौके के लिहाज से ही कहा जा रहा है कि बड़े भाग्यमान उस्थन पावा, जब ये कहा जाता है कि वाकई रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, कि वाकई ये जागता नहीं है, और क्योंकि ये गफलत की नींद में सोया रहता है इसका ये अंधापन कायम रहता है, तो इसीलिए कहते हैं कि कौड़ी के भाव इसका जीवन चला गया, इसका कोई मूल्य ना पड़ा। तो इसलिए ऐसी नादानी इंसान लगातार करते आए हैं और आज भी ऐसी ही नादानी ऐसी ही भटकी चाल चलते चले जा रहे हैं। इस सच से नाता तोड़कर विषयों विकारों में सीमित रहकर दीवारें खड़ी करते हुए, तेरा मेरा तू तू मैं करते हुए, निंदा बखिली करते हुए, इस तरह से अबलाओं की बहनों की इज्जत आबरू के ऊपर उसके साथ खिलवाड़ करते हुए, शोषण करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, तो वही होते हैं जो इंसानियत के ऊपर कलंक का काम करते हैं, एक कलंकित करते हैं, इस सारी मानव जाति के लिए कलंक बन जाते हैं। और अगर धर्म के नाम पर भी हैवानियत का रूप धारण करते हैं तब भी वो धर्म को बदनाम करने वाले बन जाते हैं। इंसानियत को बदनाम किया, धर्म को बदनाम किया, यानी कि पूरी ही पूरी मूर्खता का ही प्रमाण पत्र ये बनकर इस संसार में लोग जो जीवन जीते हैं, वाकई ही ऐसी एक पीड़ाजनक वो स्थिति जो है हमारे सामने आती है, उनको लानत मिलती है, उनको दीर्घाकार मिलती है और शाबाशी उनको मिलती है जो इंसानी जन्म पाकर अपने कदमों को संभाल लेते हैं, जो गफलत की नींद से उठ जाते हैं, जो हीरे की कदर कर लेते हैं, जो मोतियों को चुन लेते हैं जैसे एक हंस मोती चुन लेता है, और बगला जो है वो मांस का ग्राहक होता है, वो कूड़ का ग्राहक होता है, और जो हंस है वो मोती चुन ले जाता है। इसी तरह से जो ऐसा कर पाते हैं वही एक शाबाशी के पात्र होते हैं, वो मुबारकबाद के पात्र होते हैं, उनका ही जीवन धन्य होता है। तो इस तरह की धनता हर किसी के हिस्से में आए, यही एक प्रार्थना, यही शुभकामना, यही अरदास जहाँ की जा रही है वहाँ पर इसी पे आधारित ये पैगाम आज भी आपने सुने, चाहे राजस्थानी भाषा में ये पैगाम गीत के रूप में हो, कविता के रूप में हो, व्याख्यान के रूप में हो, या फिर इसी प्रकार से जो ये संदेश छोटे से बच्चे की रसना से हो, या फिर किसी बहन की रसना से हो, बुज़ुर्ग की रसना से हो, लेकिन संदेश का महत्व है ये नहीं कि किसकी रसना से आया है। जैसे वो भी शायर का शेर दास कई दफ़ा दोहराता है कि वाकई ही ये ना देखिए हसब नसब कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन ज़रूरत ये देखने की है कि क्या कहा जा रहा है, कि वो पैगाम क्या है, ये नहीं कि किसकी रसना से सुनाई दे रहा है। जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, कि वाकई ही ये नहीं कि कौन कहा क्या जा रहा है, उसका महत्व है। किस तरफ कदम बढ़ाने की प्रेरणाएं मिल रही हैं उसका महत्व है। कौन सही मायनों में धर्म का मरम हमें बता रहा है उसका महत्व है। और अगर धर्म के नाम पर अपने उल्लू सीधे किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर इंसान और इंसान के दरमियान दीवारें खड़ी करी जा रही हैं, तो फिर वास्तविकता में वही होते हैं जो धर्म को बदनाम भी करते हैं और कमज़ोर भी करते हैं। वहीं पर होता है जो कहते हैं धर्म को खतरा हो गया। धर्म को खतरा इसी बात से होता है जब वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के शिक्षाओं की अनदेखी की जाती है, जहाँ पर उन्होंने प्यार ही प्यार अपनाने की बात कही, गले लगाने की बात कही, करुणा, दया, कंपैशन, जैसे रामनवमी का त्यौहार हम मना रहे हैं, भगवान राम की वो करुणामयी भावनाएं, उनकी अवस्था कि किस तरह से करुणा ही करुणा है, किस तरह से कैकेयी और मंथरा के कारण कैकेयी माता के द्वारा वो कारण हो गया कि वनवास जाना पड़ा, कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ पर लंका तक सीता माता को रावण के द्वारा ले जाया जाना, और फिर हनुमान जी किस तरह से वहाँ जाते हैं, सब आप इस प्रकार की कथाओं और इतिहास से वाकिफ़ हैं। लेकिन बात जो दास कह रहा है कि वापस लौटने के बाद मंथुरा कांप रही है कि अब तो पूरा हिसाब लिया जाएगा मेरे से पता नहीं मुझे क्या दंड दिया जाएगा, लेकिन कैकेयी माता के मन में भी शंका है, लेकिन राम जी सबसे पहले उन्हीं के पास जाकर उनके ही कदमों में गिरते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं। यानी कि ऐसी करुणा, ऐसी क्षमाशीलता ये कहाँ पर है, और इससे बिल्कुल उलट अवस्था में रहकर जीवन जीने वाले सोचते हैं कि हम ही हैं जो धर्म की पालना कर रहे हैं और हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जहाँ पर लड़ने मारने और काटने की प्रेरणाएं दी जाती हैं वो हरगिज़ धर्म नहीं होता। मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, कि मज़हब जो असली होता है वो वैर करना नहीं सिखाता है, वैर करना अधर्म सिखाता है, वही काफिराना हरकत होती है। जब धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, वलियों गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर अगर मासूमों की जानें लेने के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं तो कहते हैं वो दरअसल काफिराना हरकत होती है, वो काफिर होते हैं। वो काफिर नहीं कि जो हमारे लिहाज से इबादत नहीं करते तो वो काफिर हो गए, नहीं, काफिर वो होते हैं जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों के पाठ को ना पढ़कर कहीं शैतान का पाठ पढ़ के जीने लग पड़ते हैं, वो दरअसल काफिर होते हैं। जैसे सूफी संतों ने कहा है कि जो दम गाफल सो दम काफर, कि जो गफलत में जितनी देर रहते हैं, जो दम कहते हैं जिस सांस हम गफलत में होते हैं, जो दम गाफल सो दम काफर, कि वही पल होते हैं जब हम काफिर होते हैं। यानी कि काफिर कौन है, सच्चा मुरीद कौन है, इबादत करने वाला कौन है, परिभाषा ही बदल दी गई। ऐसा विशालापन आ गया कि धर्म के कारण भी है इंसान नहीं रहता। जहाँ से दास ने बात आरम्भ की कि इंसानियत का दामन छोड़ देना, वो चाहे मज़हब के आधार पर छोड़ना हो, चाहे वो जाति के आधार पर छोड़ना हो, चाहे किसी लोभ लालच के आधार पर इंसानियत का दामन छोड़ना हो, किसी संकीर्णता के कारण हो, किसी खुदगर्जी के कारण हो, किसी झूठे अभिमान की पूर्ति के कारण हो, वो हानिकारक है। यानी कि इंसानियत का दामन किसी लिहाज, किसी कारण भी छोड़ना इसके लिए भारी पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यहाँ पर भी लानत मिलती है और आगे भी दोजख की आग में जलना पड़ता है। तो इंसानों को इसीलिए ये पैगाम दिया जाता है कि इंसान के रूप में पैदा हुए हो, चार टांगों वाले नहीं हो, दो पांव मिले हैं, पीछे दुम लगी नहीं हुई है, सर पे सींग है नहीं, केवल इसलिए ना सोच लो कि तुम इंसान हो गए हो। इंसान बनना होता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। अगर जन्म से ही मनुष्य हो जाते तो फिर बनने की बात वेदों में ना कही जाती कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। अगर कोई बाईं तरफ चल रहा है तो उसको कभी कहने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब बाएं चलिए, वो तो चल ही रहा है। जो बैठा हुआ है उसको कभी कहने की ज़रूरत पड़ती है कभी कि भाई साहब बैठ जाइए, वो तो बैठा ही हुआ है। इसी तरह से अगर ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, इसका मतलब कि बने नहीं, जिसम मिल गया लेकिन बने नहीं। इंसान का वजूद जिस्मानी तो सामने आया लेकिन फितरत वो गायब रही। इसलिए कहा कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। और वाकई ही जो इस तरह से सच्चे मायनों में इस सच की लखता कर लेते हैं, जो इस धर्म को सही मायनों में इसकी पालना कर लेते हैं, जो प्यार प्रीत निम्रता की भावनाओं से युक्त हो जाते हैं, जो किसी को पराया और बेगाना करके नहीं जानते हैं, जो हर किसी का भला मांगते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त होकर विचरण करते हैं कि सारा ही संसार अपना परिवार, ये भाव से युक्त होकर जो विचरण करते हैं और किसी को ठुकराते दुत्कारते नहीं हैं, वाकई वो सच्चे प्रेमी होते हैं, वो सच्चे भक्त होते हैं। और इसी तरह से गीत इसी पे आधारित, भजन इसी पे आधारित, बख्यान इसी पे आधारित ये लगातार हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे लगातार ये महापुरुष पंक्ति बोलते हैं कि ना वैर हो तकरार हो, बस प्यार ही प्यार हो। सिंधी में भी महापुरुष बोलते हैं कि ऐसा कहें खे भी ना ठुकराइयों, सबनी खे गले सा लगाइयों, कि हम किसी को ठुकराएं नहीं, हम किसी को दुत्कारें नहीं, हम सबको गले लगाएं, सारे ही खुदा के बंदे हैं, सारे ही मालिक के बंदे हैं। केवल एक अज्ञानता के कारण ये अपने इंसान होने का दामन छोड़ रहे हैं, वरना ये सारे ही नूर जो मालिक ने बख्शा वो आत्मा के रूप में अपने ही नूर को हर घट में स्थापित किया है। इसीलिए कहा है कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूरे हो सर्वथाई। कि एक नूर ते सब जग उपजा, कि सारे जगत की उपजना एक नूर से ही हुई है। जैसे अवतार वाणी में भी पढ़ते हम शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन कि एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। कि वाकई ही एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। अगर इसी का नूर है तो फिर नर ऊंचा और नारी नीचे कैसे हो गई? ये कहां से बात दिमाग में आ गई? एक नूर है सबके अंदर, जब इसी का नूर है तो फिर नारी नीचे और नर ऊंचा कैसे हो गया? नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन चार हो गए, इसके लिए चार ही मूल हैं, चार आधार हैं, चार अलग अलग नूर हैं। नहीं, एक नूर ते सब जग उपजा। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे। के एक मट्टी से ही बनाया, केवल नूर ही एक नहीं, ये पांच तत्व जो सबके साथ लगे हुए हैं शरीरों के, तो ये भी मट्टी के रूप में हैं। और एक ही मट्टी और घड़ने वाला कुम्हार भी एक, कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे। कि वाकई ही कुम्हार भी एक, मट्टी भी एक, तो इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? लेकिन बात वही मुड़कर आती है कि अज्ञानता, कि अज्ञानता में विचरण करने वाले इस हकीकत से अनजान रहते हैं, इस सच को नहीं जानते हैं, इसीलिए इनके बंधन बने रहते हैं, ये भ्रमों में जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, और आत्मा भी भ्रम में रहती है और इसीलिए आवागमन के बंधन में की बेड़ी में जकड़ी रहती है। इसको मोक्ष और मुक्ति हासिल होती नहीं है, तो हर लिहाज से नुकसान के सौदे ये किए जाते हैं इस जन्म को पा लेने के बाद। पाँच बरस का भोला भालो भोला भाला, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो, 30 बरस की जब मती उपजी नित नित लोभ नयो, माया जोरी लाख करोरी अब हुन तृप्त भयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। कि इस प्रकार से यह मोलक जन्म यूं ही गंवा दिया। कहाँ पर वो भोलेपन की अवस्था, 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, जवानी की उम्र में पहुंच गया और फिर माया जोड़ी लाख करोड़ी अब हुन तृप्त भयो। कि एक माया कारण देश विदेश गयो, कि किस तरह से ये जवानी को किस तरह से नष्ट कर देता है। ये एक अपने इस अमोलक जन्म को गंवाता चले जाता है और बुजुर्गी तक भी पहुंच जाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं करता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। यानी कि क्या लेकर के जग में आया, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। कि ये दुनिया के बाकी जो भी सिलसिले हैं ये साथ जाने वाले नहीं है, ये सब धरा का धरा रह जाता है। जैसे वो भी पंक्ति आपने कई दफ़ा सुनी होगी कि इस धरा पे इस धरा का सब धरा का धरा ही रह जाता है। कि वाकई इस धरा पे, इस धरती पे, इस धरती का जो कुछ भी है सब धरे का धरा रह जाता है, यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो जो साथ जा सकता है उससे ही वंचित हैं। तो इसलिए जो जाने वाला है साथ, उसकी कमाई कर ले, उसको साथ ले लें, और ये साथ रहने वाला यही परमस्थित परमात्मा ईश्वर निराकार है, इसका बोध, इसका ज्ञान ये जो हासिल कर लेता है, वाकई ही वो सच्ची कमाई करने वाला होता है। वही होता है जो सच्चा धनाढ्य माला माल होता है, वही है जो इंसान बाकियों के तुल्य उसकी महत्ता होती है, और ऐसी महत्ता होती है कि वो प्रभु के तुल्य हो जाता है। जैसे महापुरुषों की वाणी हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि जो वाकई ही ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके इस ज्ञान को जी लेता है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के बारे में कहा है। जैसे मीराबाई ने भी कहा कि मोहे मिले हो ब्रह्म ज्ञानी, कि मुझे ब्रह्म ज्ञानी मिल गए हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान का जिक्र हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। वही बात कि तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, कि ऐसा ऊंचा रुतबा मिल जाता है जब आत्मा का भ्रम मिट जाता है, आत्मा के बीच ये आवरण हट जाता है और इस जीवन काल में ही इस मंजिल को पा लेती है आत्मा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं, सारंग पानी राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचाने। वही बात कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा, कबीर जी वही कह रहे हैं कि कहते हैं कि कबीर और राम एक भय हैं, कोई ना सके पहचाने। तो इस प्रकार से ये एक कितना बड़ा रुतबा हो जाता है जो इस जन्म को पाकर ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ये एक अज्ञानता का अंधकार दूर करा लेता है एक ज्ञान के उजाले के द्वारा। ज्ञान उजाला पाकर ही अज्ञानता रूपी अंधकार मिट सकता है। तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार का मिटना रवि सूर्य के उदय होने के कारण ही है, वरना तो रात्रि ही रात्रि है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला ये अगर आ जाता है तो ये अज्ञानता रूपी अंधकार इसका नाश हो जाता है। तो इसलिए महापुरुष इस प्राप्ति के लिए प्रेरित करते चले जा रहे हैं कि हम प्राप्त कर लें जो प्राप्त करने लायक है, हम जान लें जो जानने योग्य है, और इस प्रकार से अपने इस जन्म को सफल कर लें। इस मालिक खालिक के साथ नाता जोड़कर आत्मा का जहां कल्याण करें, वहां पर जैसे पहले कहा कि इस जीवन के सफ़र को प्यार के साथ तय कर लें, मिलवर्तन के साथ तय कर लें, करुणा दया के भाव से युक्त होकर कर लें, ये ऐसा जीवन हम जी पाएँ, ये तभी संभव है कि वाकई ही एक ही वो, जैसे कहते हैं कि सर्व रोग का औखद नाम परलोक और लोक, आत्मा और मन दोनों के लिए सवेरा हो जाए, उसके लिए एक ही साधन है कि इस प्रभु की पहचान करना, इस प्रभु से नाता जोड़ना, इसका बोध हासिल करना। इसी से ही आत्मा का भी कल्याण और मन की भी सुंदरता बन जाती है, मन के भी भ्रम मिट जाते हैं, मन में भी खड़ी दीवारें ढह ढेरी हो जाती हैं, मन में भी कदुरत का नाश और प्रेम का स्थापन हो जाता है। और यही आज आप मिलजुल कर ये नगमे गा रहे थे कि प्यार ही प्यार हो, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम की गंगा बहाते चले जाएं। एक प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे, कि इस प्रकार से यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नफरत री तोड़ दीवारें, कि वाकई ही एक नफरत की दीवारें गिराकर और प्रेम रे पुल बनाते जाएं, कि वाकई ही ये प्रेम के पुल बनाएं, प्यार के पुल बनाएं। नफरत ने तो वीरानगी हमेशा लाई है, एक चारों तरफ मातम ही फैलाया है, तो प्यार से ही सजता संवरता है ये गुलशन धरती का, इसको सजाना संवारना है प्यार के साथ। तो प्यार से जिएं, नफरत ना करें, घृणा ना करें, ईर्ष्या ना करें, जैसे पहले कहा कि ना धर्म के नाम पर, ना पैगंबरों के नाम पर, ना वलियों के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना भाषाओं के नाम पर, ना मुल्कों के नाम पर, ना संस्कृतियों और कल्चर्स के नाम पर, ना औरत मर्द की दुहाई देकर, ना अफसर और नौकर की दुहाई देकर, अमीर या गरीब की दुहाई देकर कहीं पर भी नफ़रत को कोई गुंजाइश ना दें। और प्यार के साथ ही ये चंद घड़ियां जो मालिक ने बख्शी हैं, हम इसको नफ़रत में जाया ना करें, हम इसको स्वप्न में ना जाया करें, इसको निद्रा में ना व्यर्थ गवाएं, हम पूरा पूरा इस सीमित से समय का लाभ उठाएं जो मालिक ने हमें ये सीमित सा समय बख्शा है। क्योंकि ये पल के समान ही है कि संसार में क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का, कि वाकई ही इतनी सी ही इसकी बुकत है कि एक कंकर लगे तो मटका फूट जाता है, पानी बिखर जाता है। तो इस तरह से इंसान, ये इतना फ्रजाइल है तेरा जीवन, इसलिए तू ज़रा चेतन हो जा, सुचेत हो जा, एक एक घड़ी का लाभ उठा ले, इसको मूल्यवान बना ले, इसकी कदर कर ले, इसकी कीमत डाल ले, एक सुंदर भावनाओं से युक्त होकर, जागरूक होकर इस सफ़र को तय कर दे। छोड़ दे ये दूसरे को नीचा देखने वाली प्रवृत्ति, छोड़ दे ये झूठा अभिमान अहंकार जो हर वक्त किए रखता है कि मैं ऊंचा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नीचा है, वो नीचा है, धर्म के लिहाज से, जाति के लिहाज से, हर लिहाज से मैं ऊंचा हूँ, मैं विशेष हूँ, कभी हुकूमत का अभिमान, कहीं दौलत का अभिमान, कहीं सुंदरता का अभिमान, कहीं विद्या का अभिमान, एक हम खा के अभिमान में चूर होकर दूसरों को नीची दृष्टि से देखता चले जाता है। तो कहते हैं कि इंसान ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। जो निर्धन सरधन पे जाए, आगे बैठा पीठ फिराए, कि एक निर्धन धनवान के पास जाता है, वो आगे से वो पीठ फेर लेता है, क्योंकि उसको नीचा करके देखता है, नीची दृष्टि से देखता है। इसी तरह से ये दौड़ लगी हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जैसे दास कई दफ़ा वो मिसाल दे देता है कि एक पति और पत्नी जा रहे थे और अचानक पत्नी कहती है पति को कि आज क्या कपड़े पहन रखे हैं, मदारी लग रहे हो। तो आगे से पति कहता है कि मदारी तो लगूंगा ही, क्योंकि तू बंदरिया मेरे साथ चल रही है। यानी कि एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में ये दौड़ लगी हुई है। लेकिन महापुरुषों ने सही ढंग बताया कि आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सब ते ऊंचा, कि जो अपने आप को अदना मानता है, छोटा मानता है, वही इस हरि की दरगाह में ऊंचा होता है, उसका दर्जा ऊंचा होता है। तो दातार कृपा करे कि ऐसी भावना, ऐसी जागरूकता, ऐसी सोची, ऐसी समझ, ऐसा जीवन जीने का ढंग हर किसी को प्रदान करें, ताकि सभी अपना मुख उजला करें, अपना संसार में आया सफल करें और दोनों जहानों की बाजी जीतने वाले बने। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ बाड़मेर में आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है। और इसी तरह से ये अवसर, ये मौके, ये बनते चले जाएं, यही शुभकामना अरदास है। सत्संग जी धन।